हे परमपिता परमात्मा, हम स्वयं को आनंद से भर सकें और सबके जीवन में आनंद को जगा सकें, ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसा मार्ग हमें दीजिए। ओम तत्सत परमात्मा ने नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करने के बाद अब हम आज के सत्र को शुरू करते हैं। आज हमको एक नई पुस्तक पर काम करना है, तो हम सबसे पहले चुनेंगे कि हमको कौन से सब्जेक्ट पे बुक को पिक करना चाहिए। अभी हमने दो किताबें पेरेंटिंग पर अभी हमने की। अगर हम चाहें तो पेरेंटिंग पे एक किताब और कर सकते हैं, और उसके बाद में हम कोई दूसरी किताब ले सकते हैं। तो चलिए पेरेंटिंग पे ही एक और बुक हम करते हैं। ठीक रहेगा। तो इसके बाद में फिर अपन पेरेंटिंग के अलावा दूसरा कोई एरियाज देखेंगे, है ना। ओके ठीक है प्रेम जी, डन। तो ये जो मैंने किताब चुनी है, इस किताब का नाम है सेल्फ थियरीज। हाँ, सेल्फ थियरीज इस पुस्तक का नाम है। और सेल्फ थियरीज, आपको ध्यान है पिछले पुस्तक पेरेंटिंग चैंपियन में हमने सेल्फ इमेज के बारे में बात की थी, बहुत ज़्यादा कहा था कि ये जीवन का आधार है। तो मुझे लगा कि इसी को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हम इसमें चलते हैं। तो सेल्फ थियरीज जो है, ये किताब 2000 के आसपास पब्लिश हुई थी, और एक बहुत फेमस लेखक हैं कैरोल ड्वेक, उनकी पुस्तक है। कैरोल ड्वेक की एक इंटरनेशनली बेस्ट सेलर बुक है द ग्रोथ माइंडसेट, बहुत ही कमाल की बुक है। तो कभी समय होगा तो माइंडसेट के ऊपर जब अपन बुक्स करेंगे तो उस बुक के बिना बात ही ख़त्म नहीं होती। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैरोल ड्वेक ने वेस्टर्न जगत को दिया। ये जो पुस्तक है सेल्फ थियरीज, ये सोशल साइकोलॉजी पे है किताब। अगर हम बात करें साइंस ऑफ मोटिवेशन, तो कैरोल ड्वेक जो है वर्ल्ड के लीडिंग रिसर्चर्स में से एक हैं। तो सेल्फ थियरीज सचमुच बड़ी कमाल की किताब है, और इनकी जैसे मैंने कहा था माइंडसेट जो है वो बहुत ही पॉपुलर किताब है इनकी। थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेशन, सेल्फ थियरीज, इसके ग्रास रूट में ले जाऊं तो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, उन्होंने एक, अगेन मैं तो कहूँगा हिस्टोरिकल बुक लिखी थी उन्होंने, और उसमें उन्होंने एक बड़ी मतलब बात कही जो आगे चल के मैस्लोव थियरी के नाम से बहुत पॉपुलर हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की जो आवश्यकताएं होती हैं वो एक सीरिएशन में चलती हैं, मतलब देर आर डिफरेंट स्टेप्स, है ना, थियरीज ऑफ नीड, जैसे प्रेम जी ने कहा। हाँ, ये जब भी हम थोड़ा सा भी साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो बिना मैस्लोव को पढ़े बिना साइकोलॉजी पूरी होती नहीं है, सही पूछो तो शुरू ही नहीं होती, उसी के आसपास बहुत महत्वपूर्ण रोल मैस्लोव निभाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनका एक स्टेप बाय स्टेप सीरिएशन है। सबसे पहले किसी भी इंसान को फिजियोलॉजिकल नीड्स की ज़रूरत होती है। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स कैसे हो गई, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, सोना, कपड़े, और मतलब इस तरह का बेसिक नीड्स हो गए। जब साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं तो सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, है ना, हेल्थ, प्रॉपर्टी, थोड़ा इस तरह का। इसके बाद जो है वो आती है नीड फॉर बिलोंगिंग, तो जहाँ पे फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, है ना, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये इंसान की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। और जब उसको लगता है कि यस दैट इज़ देयर, तो इंसान इससे ऊपर उठता है। एक बहुत कमाल की बात आपको बताता हूँ, बहुत बार जीवन में जब ट्रू रिलेशंस नहीं होते, ट्रू कनेक्शंस नहीं होते हमारी लाइफ में बहुत सारे, क्योंकि मैं हमेशा से काउंसलिंग के फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि उन लोगों के जीवन में जिनके जीवन में मतलब प्रेम नहीं है और ऐसे ऐसे डीप कनेक्शंस नहीं है लाइफ में, ऐसे रिश्ते जिनके लिए आदमी कुछ भी कर गुजरे, जब ऐसे रिलेशंस नहीं होते, इतने इंटीमेट कनेक्शंस नहीं होते ना, तो लाइफ में ऐसे ऐसे मकसद भी नहीं होता। आदमी को लगता है कि यार किसके लिए करूं, क्यों करूं, जो कर रहा हूं ठीक है, बहुत है, तो आदमी ना एक स्टेग्नेशन पर आ जाता है। जब ऐसे रिलेशंस होते हैं, ये बड़ी कमाल की बात है, तो इंसान जो है भीतर से कुछ बदलता है और फिर इंसान को लगता है कि ओके, अपनों के लिए नहीं बल्कि मुझे दूसरों के लिए भी करना है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन। और वहाँ से अगली नीड होती है जिसे कहते हैं नीड फॉर एस्टीम, नीड्स कहते हैं, जहाँ आदमी को लगता है कि समाज में कुछ अच्छा करूँ, दूसरे मेरी अच्छाई को समझें, इंसान को फ्रीडम होता की तलाश होती है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो किसी भी तरह की, तो वो उस तरह से जीना चाहता है, लोग थोड़ा सम्मान की नज़र से देखें, प्रेम की नज़र से देखें। और जब एस्टीम नीड्स भी पूरी हो जाती हैं, तो जाता है आदमी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट, मतलब द वन कैन बी। ये जो लाइन है ना, इसको पकड़ना चाहिए, क्या बिकमिंग द मोस्ट दैट वन कैन बी, इसको इसको ना आप पकड़ लेना, इस लाइन को इसको लिख लेना, ये बड़ी कमाल की लाइन है, बिकमिंग द मोस्ट वन कैन बी। हम सब क्या हो सकते हैं, वो संभावना हम सबके भीतर होती है। तन्वी मैम क्या हो सकती हैं, शी कैन बी वन ऑफ द बेस्ट लीडर ट्रेनर इन द कंट्री। जयेश भाई क्या हो सकते हैं, ही कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जो भी एक जो हो सकते हैं, जो हमारे भीतर संभावना छिपी है, अगर वो नहीं हो पाते हैं तो क्या होता है, एक कसक रहती है जीवन में, एक कुछ रहता है, कुछ हो नहीं रहा, एक खालीपन रहता है। तो वो कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, जिसे मुक्ति कहते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे कैवल्य कहते हैं, बिकमिंग द मोस्ट दैट वन कैन बी। आपके जीवन का जो कोर मकसद है, आप जो हो सकते थे वो आप हो गए, एंड दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड ब्यूटिफुल थिंग। तो ये कहते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस तरह से मैस्लोव ने एक हायरार्की जो है वो इंसान कैसे जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे प्रोग्रेसिव होगा उसका माइंड। तो अभी हम, मैंने थोड़ा सा आपको बताया, अब यहाँ पर हम एक एक करके इस बुक के बारे में समझेंगे कि ये क्या है। तो बहुत कमाल की विजडम जो है ना, वो कैरल ड्वेक इस बुक में ऑफर करते हैं, और मतलब बहुत ही कट टू कट की किताब है, बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। चलिए तो हम एक 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 कॉन्सेप्ट को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल थियरी, इसको एक बात को समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे जब वो कहते हैं एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल थियरी, ये पहली सेल्फ थियरी है। अब इस पहली सेल्फ थियरी में क्या कहेंगे आदमी को, वो क्या कहते हैं, वी कैन कंसिडर आर सेल्फ एज एन एंटिटी, मैं ये हूँ। तो आई हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस एंड दैट्स इट। एंटिटी थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, एंटिटी थियरी ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट पोर्ट्रेस लाइक वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि हम जो हैं और जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, दैट इज वन ऑफ द थिंग। एंड एक बड़ी मजेदार बात है, ये ऐसे पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। तो अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री जैसा कुछ देख रहा था और मुझे अचानक वो याद आया, उसमें दो लोग आपस में बात करते हैं, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट अ फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर, योर पास्ट इज योर फ्यूचर। जैसे ही उसने ये बोला, ओ माय गॉड, मुझे गूज़बम्स आने लगे. योर पास्ट इज योर फ्यूचर. हम कभी इस तरह से देखते ही नहीं, हम कभी इस तरह से सोचते ही नहीं, हमको ये बात समझ में नहीं आती. एंड दिस इज फैक्ट. हमारे पास जीवन को जीने के दो ढंग हो सकते हैं. एक, आर पास्ट कैन बी आर फ्यूचर. जो हमारा 2025 कैसा जाएगा 2025 भविष्य है ना, 2026 एक भविष्य है, या आने वाले 5 साल हमारे कैसे जाएंगे, आधा डेकेड हम कैसे बिताने वाले हैं. पिछला आधा डेकेड हमने जैसे बताया है, ठीक वैसे ही अगला भी ऐसे ही बीतेगा. इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज 90% ऑफ आर लाइफ गोज ऑन ऑटो पायलट मोड. तो जैसे हम पिछले 5 साल जिए हैं, अगले 5 साल भी हम वैसे ही जीने वाले हैं. आर पास्ट इज आर फ्यूचर. इसको एंटिटी थ्योरी कहते हैं. जो हम हैं हम वही बने रहते हैं. बहुत मुश्किल है, हम बदलते नहीं. लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कमाल की बात जो वो कहते हैं, इंक्रीमेंटल थ्योरी, वो कहते हैं ये ऐसा है और ये सच भी है, इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते. अच्छा, ये वाली बात तो मैं इस बुक से नहीं उठा रहा हूँ कि आर पास्ट इज़ आर फ्यूचर. वो मैंने थोड़ा साइड से इन्फ्लुएंस, एक डॉक्यूमेंट्री के इन्फ्लुएंस से मैंने बोला है. कुछ एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा. अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री है कनेक्टेड, अगर आप देखेंगे तो शायद आपको बहुत मज़ा आएगा. कनेक्टेड, हाउ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स. मे बी मैंने पहले भी रिकमेंड किया. तो लेट्स कम बैक. तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, कि हमारा जो पास्ट है, आप ऐसा सोचो कि एक दर्पण लगा है और आप देख लीजिए पिछला एक साल जैसा गया था, अगला साल भी वैसा ही जाएगा. हम मिरर में हैं और पिछले 5 साल जैसे गए, अगले 5 साल भी वैसे ही जाएंगे. पिछले 10 साल जैसे गए, अगले 10 साल भी वैसे ही जाएंगे. अभी तक हमने 40 साल 45 साल जो जिया है, अगले 30-40 साल जो भी बचे हैं वो भी ऐसे ही जाएंगे. दिस इज़ द सेम वे. पर ये जो वर्तमान क्षण हमको मिला है, इस वर्तमान क्षण में अगर हम ठहरना सीख जाएं, इस वर्तमान क्षण में अगर हम जीना सीख जाएं, अगर हम चैतन्य, जो जीवन को पैदा करने की शक्ति है, जो जीवन को चलाने की शक्ति है, जो जीवन को सृजित करने की शक्ति है, उस चैतन्य से भरकर अगर हम इस वर्तमान क्षण में रुक जाएं, ठहर जाएं, तो हम भविष्य को बदल सकते हैं. वर्तमान को बदलकर हम भविष्य को बदल सकते हैं. अब क्या होगा, इस क्षण को हमने कैसा जिया. हर क्षण क्या होता है, हमारे पास एक अवसर होता है, +1 -1 हर क्षण छोटे बड़े निर्णय हम लेते हैं, +1 -1 और ये जो छोटे छोटे निर्णय होते हैं, +1 एक कदम आगे, -1 तो +1 का मतलब है हम कुछ सृजित कर रहे हैं नया, -1 का मतलब है जो पास्ट में जैसा हमने किया, जो किया आज तक हमने वही जिया. तो वो कहते हैं पहली थियरी के रूप में एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल थियरी, कि हमने जीवन के किस सिद्धांत को चुना है, कौन सा जीवन जीने का ढंग है जिसको हमने चुन लिया है, जिसका हमने अभ्यास कर लिया है और किस पर हम चलना चाहते हैं. ये पहली और इम्पॉर्टेंट बात वो हमारे सामने रखते हैं. तो आपको शायद बात पकड़ में आ गई होगी, ये चुनाव हमको वर्तमान क्षण में ही करना पड़ता है. एक और बात मैं बताता हूँ, एंटिटी थ्योरी में मतलब हमको लगता है ठीक ही होगा. किसी किसी बच्चे को तो ऐसा भी लगता है ना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ. तो क्या होता है कि थोड़ा एफर्ट डालता है तो भी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है एग्ज़ाम का. तो हमने क्या कर दिया कि एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, उसमें भी एंटिटी थ्योरी अगर हमने चुनी कि मैं तो अपने बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं तो अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है हमने बच्चे को ख़राब कर देना है या आपने अपने जीवन को ख़राब कर देना है. भले हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पता नहीं चलता कि वो पॉजिटिव कब ओवर पॉजिटिव हो जाता है, पता नहीं चलता. तो इसलिए वो कहते हैं हमको लगातार जो है वो इंक्रीमेंटल जो प्रोसेस है, वट एवर आई एम वेर एवर आई एम लेट्स गो एंड मेक इट बेटर एवरी डे। तो वैसे तो हाँ, ये सिवा जी मुझे भी बहुत गूजबम्स आए, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, ओह माय गॉड। मैं कई देर तक मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को रोक दिया। ऐसे ना कई बार ऐसा नहीं होता, आपके ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप ऐसे सन अंदर ऐसे बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं और आपको लगता है अरे बाप रे क्या बोल दिया, ओह गॉड, ऐसा तो कभी किसी ने सिखाया नहीं, ऐसा तो कभी किसी ने दिखाया नहीं। बहुत शॉकिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो दूसरा जो है इस एंटिटी थ्योरी को थोड़ा और पकड़ने की कोशिश करें, तो मुख्यतः ये थ्योरी जो है वो हमको ये कहती है जो है सो है, जैसा है सो है, जो किया जा सकता है वो किया जा चुका, जो होना था वो हो चुका, और जब जो जीवन है वैसा ही हम जिएंगे। तो दैट इज इट। तो हम मेरी जो परिस्थितियां हैं वैसी रहेंगी, मैं कौन से घर में जीऊंगा, जो मेरा घर है इसी में जीऊंगा बाकी के 30 साल 40 साल। अच्छा मैं कौन सा जॉब करूंगा, जो मेरे पास अभी है वही करूंगा। अच्छा तो कैसा जीऊंगा, कल सुबह उठ के कैसा जीऊंगा, परसों कैसे। तो एंटिटी थ्योरी और दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज ऑल अबाउट, और हम बोलते भी हैं कई बार, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो यही हूँ, एंड दैट इज हाउ वी लिमिट आर ओन सेल्फ, दिस इज हाउ वी लिव आर ओन लाइफ। तो वो इस बात को यहाँ रखते हैं कि ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक ढंग है, ये एक तरीका है, और हम ऐसा जी सकते हैं। तो ये पहला एंटिटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कि हमारी बुद्धि, हमारे सामर्थ्य, हमारी शक्ति वो जो है सीमित है और इतना कर सकते हैं। जो दूसरी इंक्रीमेंटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें वो क्या कहते हैं कि जो दूसरे तरीके लोग हैं वो इसको अलग तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे पास हमारी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन की पावर है, जो हमारी एक्सप्रेशन की पावर है, जो हमारी कनेक्शन की पावर है, वो बदल सकती है, वी कैन इन्हांस, वी कैन मेक इट बेटर, और हम जितना इनको बेटर कर सकते हैं उतना ही एक बेटर लाइफ हम जी सकते हैं। तो कल हम इस इंक्रीमेंटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा गहराई से जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के सत्र के लिए इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।